इशिका अभिमन्यु से मिलने के लिए उसके फ्लोर पर गई थी। अभिमन्यु अपने काम में लगा हुआ था जब इशिका ने ये कहा कि वो उसे याद कर रही थी। ये सुनते ही अभिमन्यु ने अपना सारा काम छोड़ दिया और उम्मीद भरी निगाहों से इशिका को देखने लगा। इशिका कुछ पल रुकी और बोली, मैं वो तुम्हारी किताब के बारे में सोच रही थी, मुझे वो चाहिए, क्या वो मुझे मिल सकती है? इशिका की बात सुनकर अभिमन्यु बिल्कुल चुप हो गया था। उसने गहरी सांस ली और डेस्क पर रखी किताब उठाकर इशिका को दे दी थी। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखकर धीरे से बड़बड़ाकर कहा, बात के बीच में ऐसे पोज लेना जरूरी होता है क्या? सीधे सीधे पूरी लाइन नहीं बोल सकती थी क्या? हद दे, ये मेरे बारे में नहीं, मेरी बुक के बारे में सोच रही थी। अभिमन्यु की बात इशिका को सुनाई नहीं दी। वो किताब मिलने से काफी खुश हो गई थी। उसने मुस्कुराकर अभिमन्यु को थैंक यू कहा। इसके बाद इशिका वहां से जाने लगी। अभिमन्यु उसे जाते हुए देख रहा था। उसे देखकर वो सार्कास्टिकली मुस्कुराकर बोला, अजीब बात है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और मैं पिछले दो दिनों से इसके बारे में सोचे जा रहा हूँ। मुझे इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, इसका तो बॉयफ्रेंड भी है। अभिमन्यु ने तुरंत ही अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर से अपने काम में लग गया। R&D डिपार्टमेंट का इशिका का काम खत्म हो गया था तो उसने पूरा ध्यान अल्जाइमर की दवाई की तरफ देना शुरू कर दिया था। शाम तक बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अचानक ही उस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अर्पित चौधरी और नक्श गुस्से में वहां पर पहुंचे। उनके साथ मैनेजर भी था। रोहन ने इशिका के भेजे हुए प्रोजेक्ट को पूरी तरह चेक कर लिया था, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब डायरेक्टर और नक्श वहां आए तो रोहन उनके पास जाकर बोला, मानना पड़ेगा इस बार हमारी कंपनी को काफी अच्छी एम्प्लॉय मिली है, इशिका ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। देखना, इशिका का काम डॉक्टर मर्चेंट के जितना ही अच्छा होने वाला है। रोहन की बात सुनकर डायरेक्टर चौधरी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा तो वहीं नक्श भौंय उठाकर बोला, हाँ उनके जैसा अच्छा तो होना ही है क्योंकि दोनों का प्रोजेक्ट एक जैसा जो है। रोहन ने उसे सीरियसली नहीं लिया। वो हंसते हुए बोला, तब तो ये बहुत अच्छी बात है जो दोनों के सोल्यूशन एक जैसे हैं। अचानक उसने नक्श की बात पर गौर किया और हैरानी से पूछा, आखिर मतलब क्या है तुम्हारी बात का, दोनों एक जैसे हैं? सॉरी, मुझे कहने में थोड़ी सी गलती हो गई, दोनों एक जैसे नहीं बल्कि एक ही हैं, क्योंकि तुम्हारी प्यारी इशिका ने डॉक्टर मर्चेंट की फाइल को चुराया है, नक्श ने गुस्से में जवाब दिया। रोहन को सुनाने के बाद नक्श ने इशिका की तरफ देखा और उसकी इंसल्ट करते हुए कहा, दोपहर को मुझे डॉक्टर मर्चेंट का मेल मिला था, मैंने तुम्हारा भेजा हुआ प्रोजेक्ट भी देखा था, अब मुझे समझ आ रहा है तुम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी। काफी चालाक हो तुम जो जानबूझकर डॉक्टर मर्चेंट से पहले मेल भेजा ताकि हमें शक ना हो, हमें यही लगे कि उस प्रॉब्लम को तुमने सॉल्व किया है। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन बदल दिया तो क्या हो गया, बाकी सब बिल्कुल सेम है मिस सिंघानिया। तुम्हारी भोली शक्ल के पीछे तुम अपनी काली करतूत को छुपा नहीं सकती, अब सबको पता चल जाएगा कि तुम एक चोर हो इशिका सिंघानिया। नक्श ने सीधे सीधे इशिका पर प्रोजेक्ट चोरी करने का इल्जाम लगाया था। उसकी बातें सुनकर रोहन गुस्सा हो गया। वो बोला, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, इशिका काफी वक्त से हमारे यहाँ काम कर रही है, हम अच्छे से जानते हैं कि वो कितनी टैलेंटेड है, हमने भी प्रोजेक्ट में उसकी मदद की है। किस तरह की गलतफहमी, नक्श ने भौंय चढ़ाकर कहा, कहीं तुम ये तो कहने की कोशिश नहीं कर रहे कि इशिका ने नहीं बल्कि डॉक्टर मर्चेंट ने उसकी प्रोजेक्ट को कॉपी किया है? ये क्या मजाक है, कहाँ वो एक डॉक्टोरल स्कॉलर है और इशिका अंडर ग्रेजुएट है, तुम खुद समझ सकते हो किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस और टैलेंट है। नक्श ने काफी फैक्ट के साथ अपनी बात बोली थी तो रोहन आगे कुछ नहीं कह पाया। वहीं जब इशिका ने उनकी बातचीत को सुना तो उसने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली थी। इशिका मन ही मन बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी मेल किसी को नहीं भेजा था, इसका मतलब किसी ने मेरे प्रोजेक्ट के साथ छेड़छाड़ की है, उसे थोड़ा बहुत बदला और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे डॉक्टर मर्चेंट ने उसे भेजा हो, ये सब नक्श की हरकत है ताकि वो मुझे अपने करीब ला सके। तुम इतना कैसे गिर सकते हो नक्श राजवंश, इशिका उनके पास गई और शांत लहजे में कहा, आपको मेरे ऊपर कोई और भी इल्जाम लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं, क्या लगता है मैंने डॉक्टर मर्चेंट का आया हुआ मेल पढ़ लिया और फिर उसे कॉपी करके आपको भेज दिया था? आपको कोई और भी पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं तो वो भी बता दीजिए। इशिका का लहजा भले ही शांत हो पर उसके शब्द सख्त थे। उसकी बात सुनकर डायरेक्टर भी हैरान रह गए, यहाँ और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी? नक्श इस मामले को जाने नहीं देना चाहता था। वो इशिका से सख्ती से बोला, बहाने बनाना बंद करो इशिका सिंघानिया, अभी भी मौका है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और उसकी सजा भुगत लो। अगर सामने से आकर तुमने गलती को एक्सेप्ट की तो आई विल मेक श्योर कि तुम्हें ज्यादा सजा ना मिले। रोहन इशिका को फंसने नहीं देना चाहता था। वो इशिका से बोला, इशिका तुम मुझे बताओ कि तुम्हें और कौन सी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, क्या कुछ गलत हो रहा है यहाँ? इशिका ने नक्श की तरफ देखकर कहा, ये मुझे बदनाम कर रहा है, डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट इस तक कभी नहीं पहुंच सकता। इशिका उन्हें खुलकर नहीं बता पा रही थी कि उसने कभी नक्श को प्रोजेक्ट भेजा ही नहीं था, फिर वो कैसे ये दावा कर रहा था कि उसे डॉक्टर मर्चेंट की तरफ से प्रोजेक्ट कम्प्लीट करके मिला था। रोहन ने नक्श को गुस्से से घूरा। नक्श ने हंसकर कहा, कॉलेज में जब साथ थे तब लगा नहीं था कि तुम इतनी बेशर्म हो, एक तो चोरी कर रही हो, ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैंने डॉक्टर मर्चेंट को राजवंश एम्पायर के लिए हायर ही नहीं किया था, यही कहना चाहती हो ना तुम? तभी तुमने ये कहा कि डॉक्टर मर्चेंट कभी मुझे प्रोजेक्ट नहीं भेजेंगे। मैं तुम्हारी तरह हवा में बातें नहीं करता, मेरे पास सबूत है और वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। कैसे सबूत, रोहन ने पूछा। नक्श ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और रोहन को कुछ दिखाते हुए बोला, ये देखो, ये मुझे आयशा ने कल शाम ही भेज दिया था। आयशा किसी वजह से बिजी थी, इस वजह से उसे देर हो गई थी। देखा जाए तो डॉक्टर मर्चेंट ने प्रोजेक्ट पहले पूरा किया था, बस मैं ही उसे सबमिट नहीं कर पाया। अब इससे साफ हो गया कि इशिका ने डॉक्टर मर्चेंट के प्रोजेक्ट को चुराया है और उसे अपना बताकर सबके सामने पेश कर दिया। इशिका समझ गई थी कि इन सब के पीछे असली अपराधी नक्श नहीं बल्कि आयशा थी। नक्श ने आगे कहा, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे पास एक ऐसा एविडेंस है जो साबित कर देगा कि मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हारी ये टैलेंटेड एम्प्लॉय छूट। इशिका ये सोच रही थी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। फिर उसे याद आया कि कल शाम जब वो राधिका से मिलने पहुंची तो उसे चेकअप के लिए ले जाना था। आयशा के पेट में दर्द हो रहा था इसलिए वो आराम कर रही थी। इशिका उन्हें चेकअप के लिए लेकर गई थी, इस बीच उसका लैपटॉप वहीं पर रह गया था। सब समझ आते ही इशिका के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो मन ही मन बोली, आयशा को मेरे लैपटॉप का पासवर्ड कैसे पता चला? इशिका को शांत देखकर नक्श फिर से चिल्लाकर बोला, अब कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास कहने को, होगा भी कैसे, तुम्हारी चोरी जो पकड़ी गई है। बस बहुत हो गया, अभी पुलिस को बुलाओ और इसे अरेस्ट करवाओ। इसने डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट चुराया है, अगर ये न्यूज़ उन तक पहुंची तो वो हमारे साथ कभी काम नहीं करेंगे। कंपनी को इतना नुकसान होगा, ऊपर से हमारी इमेज भी खराब होगी।
उनके साथ मैनेजर भी था, उसने पूरा मामला सुना तो वो बोला, पुलिस को इन्वॉल्व करना सही नहीं होगा, अगर न्यूज़ बाहर गई तो कंपनी को बहुत नुकसान होगा। ऐसा करते हैं, सारे सबूत के साथ फैसला बोर्ड के ऊपर छोड़ देते हैं। आज फ्राइडे है तो 2 दिन की छुट्टी रहेगी। पूरे सबूत देखने के बाद मंडे को बोर्ड अपना फैसला ले लेगा और फिर हम देखेंगे कि इस मामले को पुलिस तक ले जाना है या कुछ और करना है। नक्श को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आखिर उसे भी कंपनी की रेपुटेशन प्यारी थी। वो इशिका के पास गया और बोला, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, इन 2 दिनों में अगर तुम्हें जरा सा भी अपनी गलती का एहसास होता है तो मेरे पास आ जाना, मैं इस मामले में कुछ कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें अपनी इज्जत पर अड़े रहना है तो अच्छी बात है, मंडे को तुम्हारा डिसीजन हो जाएगा, तब मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि पास्ट में हमारे थोड़े बहुत भी अच्छे रिलेशन थे। इशिका को धमकी देने के बाद नक्श उनके साथ चला गया था। उनके जाते ही टीम 1 इशिका को घेर कर खड़ी हो गई थी, उन्हें इशिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सानिया इशिका के पास आकर बोली, इन सबको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्या तुमने इस मामले में दिशांक राठौर की हेल्प ली थी? उन्होंने तुम्हें प्रोजेक्ट भेजा था क्या? कोई बात नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग जल्द ही दूर हो जाएगी, हम तुम्हें जानते हैं, तुमने चोरी नहीं की है, लक्ष्य ने कहा। इशिका को थोड़ी राहत महसूस हुई, कम से कम उसके काम करने वाले कलीग्स उसे गलत नहीं समझ रहे थे। इशिका ने उन सब की तरफ देखकर धीरे से कहा, तुम सब लोग मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी इनोसेंस प्रूव कर दूंगी। इशिका ने अपने मन में कहा, अगर मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी सबके सामने रिवील की तो मैं सच्ची साबित हो जाऊंगी, ये लोग ऐसे मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब मैंने रोहन को बताया था तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगा था। मैं उन्हें अपनी कंपनी के पेटेंट और बाकी सबूत दिखाऊंगी तो ये मान जाएगा, लेकिन दूसरे पेटेंट के चलते मेरी आइडेंटिटी दिशांक US लेकर गया है, आई होप वो मंडे तक लौट आए। इशिका ने एक नज़र अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को सोचा, अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, ये सोचकर कि जब उन सबके सामने इशिका की सच्चाई आएगी तब उनके चेहरे देखने लायक होंगे। जिस डॉक्टर मर्चेंट के साथ वो काम करने के सपने देख रहे थे वो पिछले कई दिनों से उसी डॉक्टर मर्चेंट के साथ काम कर रहे थे। ऑफिस टाइम खत्म हो जाने के बाद इशिका पार्किंग एरिया में गई, वहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ पृथ्वी था, लेकिन आज फिर अभिमन्यु नहीं आया था। पृथ्वी ने इशिका से कहा, मिस्टर राजवंश मीटिंग में बिजी हैं, मैं आपको घर छोड़ दूंगा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी, इशिका ने जवाब दिया। पृथ्वी ने उसके मना करने के बावजूद कहा, अंदर बैठो, मुझे मिस्टर राजवंश ने तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहा है। इशिका ने आगे बहस नहीं की और गाड़ी में जाकर बैठ गई, पृथ्वी भी उनके साथ था। गाड़ी में बैठते ही पृथ्वी ने कहा, मिस सिंघानिया, हर काम आराम से होता है और तुम बहुत जल्दबाजी दिखा रही हो। डायरेक्ट डॉक्टर मर्चेंट के साथ खुद का कंपैरिजन कर लिया, वैसे आज तुमने अपने डिपार्टमेंट में हंगामा मचा दिया था। पृथ्वी की बातों से साफ था कि शाम को R&D डिपार्टमेंट में जो भी हुआ था वो उससे छुपा हुआ नहीं था। इशिका ने उसे देखकर सिर हिलाया। इशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पृथ्वी ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि दादी तुम्हें पसंद करती हैं और उनकी वजह से मिस्टर राजवंश तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारा जो मन करेगा वो तुम करोगी? बाकी सब तो ठीक था, लेकिन चोरी करना यहाँ कोई सहन नहीं करने वाला है। इशिका पृथ्वी को कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, उसने तुरंत अपने बैग से ईयरप्लग्स निकाले और अपने कानों में डालकर म्यूजिक सुनने लगी। उसकी इस हरकत पर पृथ्वी भी हैरान रह गया। उनकी गाड़ी जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच गई थी। इशिका जब सीढ़ियों से जा रही थी तब उसे आदर्श सिंघानिया मिल गए थे। उन्होंने इशिका की तरफ देखकर रूखे तरीके से बोला, राधिका तुमसे मिलना चाहती है। इशिका ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया और फिर आदर्श के साथ राधिका के रूम में पहुंची। उसने वहां जाकर देखा कि श्रुति ने सारी पैकिंग कर रखी थी, इसका मतलब साफ था कि उनको डिस्चार्ज मिल गया था, बस वो इशिका से मिलना चाहती थी इसीलिए अभी तक घर नहीं गई थी। इशिका को देखते ही राधिका ने चिंता जताते हुए कहा, इशिका ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट चुरा लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा कुछ किया होगा। इशिका कोई जवाब देती उससे पहले आदर्श ने सार्कास्टिकली कहा, तुम्हारे यकीन न करने से क्या होगा राधिका, हमारे पास पूरे सबूत हैं। ये तो नक्श ने पुलिस को नहीं बुलाया क्योंकि उसका नाम हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है। तुम बेवजह ही इस पर इतना यकीन करती हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मालविका दास की बेटी से और क्या उम्मीद की जा सकती है, उसी का गंदा खून इसकी रगों में दौड़ रहा है। आदर्श की बात सुनकर राधिका ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मैं इशिका से बात कर रही हूँ तो आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते क्या? फिर उन्होंने इशिका से पूछा, मुझे बताओ इशिका, आखिर क्या चल रहा है, मुझे तुमसे सुनना है सारा सच। राधिका अभी भी इशिका पर यकीन करती थी। ये देखकर इशिका की आंखें नम होने लगी, जबकि उसका खुद का बाप था जो उसे अपनी बेटी तक मानने से इनकार करता था। आज भी राधिका को इशिका की परवाह थी, ये देखकर उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन इशिका उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले आयशा बीच में बोल पड़ी, इशिका मुझे पता है तुमने राजवंश एम्पायर किसी खास मकसद से ज्वाइन किया है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मिस्टर अभिमन्यु राजवंश और बड़ी दादी को इम्प्रेस करके सक्सेस हासिल कर लोगी? एक बार आकर मुझसे कह देती तो मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट ऐसे ही दे देती, तुम्हें उसे मेरे लैपटॉप से चुराने की क्या जरूरत थी? आयशा ने चोरी की थी और सारा इल्जाम सीधे सीधे इशिका पर डाल दिया था। इस वक्त इशिका का मन कर रहा था कि वो आयशा का मुंह तोड़ दे, और वो उसे कुछ इसी इरादे से देख रही थी। वो कहते हैं ना, कोई कितना भी झूठ बोले लेकिन सच सामने आ ही जाता है, और जिस दिन इशिका की असली सच्चाई सामने आई उस दिन आयशा और नक्श का सबसे बुरा हाल होने वाला है। कहानी के नए ट्विस्ट के साथ बने रहिए और पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।